الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو رمضان المبارک کے بعد آج یہ ہماری پہلی کلاس ہے، سورہ یوسف کی تفسیر جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں معارف القرآن کی، جلد نمبر 5 سے. یہ سلسلہ رمضان المبارک سے پہلے بھی چل رہا تھا، مردوں میں سورہ یوسف کی تفسیر چل رہی تھی اور خواتین میں الگ سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر چل رہی تھی، لیکن رمضان المبارک میں ہم نے صرف سورہ یوسف ہی کو لے کر کے آگے چلے. تو مرد خواتین میں بھی پھر آج دوبارہ سے سورہ بنی اسرائیل کے جہاں چھوڑا تھا وہاں سے شروع ہو گیا سلسلہ الحمدللہ، اور مردوں میں پھر سورہ یوسف کا. لیکن مردوں کی کلاس میں جو ہے وہ خواتین کو بھی انوائٹ کر لیا جاتا ہے، کیونکہ شام کے وقت کسی کے پاس وقت ہو تو وہ بھی یہ کلاس لے سکتی ہیں. تو رمضان المبارک کی جو آخری کلاس ہوئی تھی اس میں ہم انہی آیات کو ڈسکس کر رہے تھے جو ابھی تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 67، 68 اور 69. ترجمہ ہم نے ان کا پڑھ لیا تھا، خلاصہ تفسیر بھی پڑھ کے مکمل کر لی تھی، اور معارف و مسائل پہ ہم تھے پیج نمبر 110، 110 کے اوپر نہیں، 112 کے اوپر تھے، اور احکام و مسائل ہم نے پڑھنے شروع کرنے تھے. تو آج ہم احکام و مسائل سے شروع کرتے ہیں. حضرت مفتی شفیع رحمتہ اللہ علیہ ان آیات سے جو احکام اور مسائل علماء نے اخذ کیے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مذکورہ دو آیتوں سے چند مسائل اور احکام معلوم ہوئے. ٹھیک ہے، ویسے آیات جو ہیں مجموعے میں تو کل 3 آیات بنتی ہیں، لیکن حضرت غالباً ان میں سے شروع کی دو یا آخری کی دو کا ذکر کر رہے ہیں کہ چند احکام اور مسائل معلوم ہوتے ہیں. تو اول یہ کہ نظر بد کا لگ جانا حق ہے، ٹھیک ہے، اس سے بچنے کی تدبیر کرنا اسی طرح مشروع اور محمود ہے جس طرح مضر غذاؤں اور مضر افعال سے بچنے کی تدبیر کرنا. ٹھیک ہے، یعنی نظر بد جو ہے نا، کہ جس کو کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں نظر لگ جانا، ٹھیک ہے، تو یہ جو نظر لگ جانا ہے نا، یہ انسان کے جسمانی بیماری، ٹھیک ہے، جس کو کہ طبعی یا نیچرل سکنس یا النس بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کی فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ فزیکل ہیلتھ کو خراب کر دینے والی ایک چیز ہے، ایک کاز ہے، ایک جینوئن اور یعنی ایگزسٹنگ کاز ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ حضرت نے لکھا کہ مضر غذاؤں، یعنی جب ہم خراب غذائیں کھاتے ہیں تو ان کے یا تو ان کے اندر بیکٹیریا ہوتے ہیں، فنگس لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے انسان کو بیمار ہو جاتا ہے، یا اس غذا کی جو ہے نا وہ اوور آل کمپوزیشن ہی جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ السر کازنگ چیزیں ہوتی ہیں، یا آج کل جو ہے وہ فوڈ ہیلتھ میں جو بڑے پرابلمز ہیں کہ ان آرگینک قسم کی جو اشیاء بہت ملی ہوئی ہوتی ہیں، کارسنوجنز ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا وہ نام ہے، اس سے جو ہے نا پھر انسان کی ہیلتھ جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. تو بھائی وہ کون سی والی ہیلتھ خراب ہوتی ہے؟ وہ فزیکل ہیلتھ خراب ہوتی ہے. اور مضر افعال سے کیا مراد؟ کہ انسان جو ہے نا وہ کچھ ایسے یعنی ایسے ایکشنز کرتا ہے جو کہ اس کی صحت کے لیے مناسب نہیں ہوتے ہیں، جیسے मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा जो है ना वो सोए पड़े रहना, तो अब उससे जो है वो उसके अंदर कसलान पैदा होता है, उसकी फिजिकल हेल्थ खराब हो जाती है, मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाती है, और बहुत सारी मुख्तलिफ शक्लें सबको पता ही हैं, तो वो फिजिकल हेल्थ को जो है ना वो खराब करती हैं। तो ये जो नजरे बद है ना, ये बजाहिर कोई फिजिकल फैक्टर नजर नहीं आता इसके अंदर, जैसे कि इसमें कोई वायरस नहीं होता है, इसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं होता है, इसके अंदर कोई जो है वो रेडियो एक्टिव मटीरियल नहीं होता, कोई कार्सिनोजेंस नहीं होते कोई, राइट? तो फिजिकली कोई इसके अंदर चीज हमें नजर नहीं आती, इवन हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो नहीं देख सकते इन चीजों को, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई रूहानी बीमारी पैदा कर रही है, ठीक है ना? ये रूहानी बीमारी पैदा नहीं कर रही होती हैं, बल्कि ये भी जिस्मानी बीमारियां ही पैदा कर रही है, नजरे पद भी, ठीक है ना? यही मामला जो है वो जादू के साथ भी होता है कि वो भी बस एक जिस्मानी बीमारी पैदा कर रहा होता है, वो रूहानी बीमारी पैदा नहीं कर सकता है, ठीक है? सबसे बड़ी दलील तो कुरान मजीद खुद है, ठीक है? नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जादू हुआ और मुआवज़तैन से ये बात साबित है, लेकिन वो सिर्फ एक जिस्मानी बीमारी कॉज की उसने, ठीक है? उसने रूहानी बीमारी कॉज नहीं करी, रूहानी बीमारी तो नबी अलैहिस्सलाम के अंदर हो ही नहीं सकती, किसी नबी के अंदर नहीं हो सकती, ठीक है? तो नबी अलैहिस्सलाम के अंदर कौन सी बीमारी पैदा हुई? जिस्मानी बीमारी पैदा हुई, लेकिन वो जिस्मानी बीमारी भी क्या क्या शक्ल थी उसकी? उसकी शक्ल जो है वो बुखार नहीं था, नजला खांसी और जुकाम नहीं था उस जिस्मानी बीमारी की शक्ल, बल्कि क्या था? निस्यान। नबी अलैहिस्सलाम भूल जाते थे। भूलने का ताल्लुक किस चीज के साथ है? भूलने का ताल्लुक नाक के साथ नहीं है, कान के साथ नहीं है, जुबान के साथ नहीं है, बल्कि भूलने का ताल्लुक जो है वो अकल और दिमाग के साथ है, ठीक है ना? दिमाग के अंदर जो है ना ये अल्लाह ताला ने न्यूरॉन्स बनाए हैं, इसके अंदर चीजें जो है वो याद रहती हैं, स्टोर रहती हैं, तो वो जो है वो मेल फंक्शनिंग क्योंकि शुरू कर देती हैं, तो इस इंसान जो है वो किसी चीज को भूल जाता है। रूहानी बीमारी क्या चीज होती है? रूहानी बीमारी होती है गुना, गुना अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी करना, ठीक है ना? ये रूहानी बीमारी होती है या ये रूहानी बीमारी कॉज करती है अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करना, ठीक है? तो ये बिल्कुल एक अलग यानी एरिया है, ठीक है? तो इंसान झूठ बोलता है, धोखा देता है, गइबत करता है, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ता है, ये रूहानी बीमारी होती है, ये रूहानी बीमारी कॉज करती है, व्हाटएवर ये डिटेल्स है इसकी, ठीक है? तो इन चीजों को जो है ना वो हमने जो उनको प्रॉपर जगह पे रखना है, ठीक है? जहां पर वो है हर चीज को उसके मुकाम के ऊपर रखना है, रूहानी बीमारी को रूहानी बीमारी के मुकाम पे रखना है, उसको जिस्मानी बीमारी नहीं बना देना है, और इसी तरह से जिस्मानी बीमारी को रूहानी बीमारी नहीं बना देना है। हर चीज का अपना एक मुकाम होता है, उसको उसके मुकाम में ही रखना, ये सबसे जरूरी चीज होती है, ठीक है? दूसरे ये कि दूसरों के लोगों के हसद से बचने के लिए अपनी मखसूस नेमतों और औसाफ का लोगों से छुपाना दुरुस्त है, ठीक है? जैसे याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने सारे बेटों को जो है ना वो यानी एक साथ दाखिल होंगे, लोगों की नजरों में आएंगे और इनकी यानी हसद का शिकार भी हो सकते हैं, बदनजरी का शिकार भी हो सकते हैं, तो उनको कंसील करने की कोशिश करी कि वो अलग अलग जाएं, किसी को पता ना चले कि ये सारे भाई हैं और एक ही बाप की औलाद है, ठीक है? तो ये जो असबाब के दर्जे में जो ये स्टेप्स उठाए जाते हैं ना कि लोगों की नजर ना लगे, हसद से जो है वो हिफाजत हो, ये दुरुस्त है। ये ऐसा नहीं है कि तवक्कुल के खिलाफ हो, ये अल्लाह के ऊपर जो है वो आपका यकीन नहीं है, एतमाद नहीं है कि अल्लाह ताला हिफाजत करने वाले हैं तो कोई जरूरत नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है? तो ये जो है ना ये यानी ये हमें बाकायदा सुन्नत में सिखाया गया है, कुरान मजीद के इन वाकयात से भी पता चलता है और नबी अलैहिस्सलाम की बाकायदा हदीसें भी मौजूद हैं। हत्ता कि एक हदीस का मफहूम तो ये भी है ना कि अपने जो मंसूबे होते हैं ना, जो तुमने कोई प्लान किया है कि भाई मैं फैक्ट्री लगाऊंगा या मैं कोई फलाना प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा या मैंने कोई घर बनाना है, तो अपने मंसूबों की जो है वो हिफाजत करो उनको पोशीदा रखने से रख करके, ठीक है ना? हर एक को हर एक में प्रचार मत करते रहो उन चीजों के बारे में, मेरा इरादा ये है, मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, ठीक है ना? नहीं, जिसको जरूरत है बताने की, भाई जैसे कंस्ट्रक्शन करनी है तो कंस्ट्रक्टर्स को बताना होगा, आर्किटेक्ट्स को बताना होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो है ना वो लिख करके वायरल करो दुनिया के अंदर, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ घर बनाने के लिए, मैं जा रहा हूँ जो है ना वो एक प्लांट लगाने के लिए जा रहा हूँ, और मैं फलाना चैरिटी का काम करने जा रहा हूँ, या मैं फलाना मदरसा बनाने जा रहा हूँ, मैं फलाना स्कूल बनाने जा रहा हूँ, ये नहीं करो, इसलिए कि लोगों की जो है ना वो नजर लगेगी, हसद का शिकार हो गए। और ये अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर ये फैक्टर्स रखे हैं, इनका असर अल्लाह ताला ने रखा है, ठीक है ना। तो वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए मास्क लगाते थे कि नहीं लगाते थे, ये क्यों नहीं कहते थे कि अल्लाह हिफाजत करने वाला है। एक एक तो कैटेगरी थी लोगों की जो कि वो दूसरे एक्सट्रीम में चले गए थे ना, अल्लाह हिफाजत करने वाला है, कुछ नहीं होता, मौत से नहीं डरना चाहिए, ठीक है। तो भाई मौत से नहीं डरना चाहिए एक अलग चीज है, और हिफाजती तदाबीर अख्तियार करना जो कि जायज हो और सुन्नत के खिलाफ ना हो, शरीयत के खिलाफ ना हो, वो तो हुक्म है दीन का, ठीक है ना। तो बहरहाल मास्क लगाते थे, सोशल डिस्टेंसिंग भी करते थे, तुक बनती थी नहीं बनती थी, लेकिन बहरहाल करते तो थे ना, वहां क्यों नहीं कहते थे कि अल्लाह हिफाजत फरमाने वाले हैं। तो भाई इसी तरीके से नजर बद से बचने के लिए भी तो हिफाजती तदाबीर करो ना, ठीक है। जहां पे दिल नहीं चाहता वहां पे जो है ना वो अल्लाह के सर थोप देते हैं, और जहां पे अपना मर्जी चल रही होती है तो वहां पे जो है ना वो जो जो मर्जी आती है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तो धोखा है अल्लाह ताला को देने की, नमना काम कुछ कर रहे, तो हमें उससे नुकसान ही होता है खाली। अच्छा, किसी ने पूछा कि जादू से घरों में लड़ाई करवाना ये रूहानी है या जिस्मानी है? माशाल्लाह, बड़ा टिका गया आपने सवाल किया, जबरदस्त को, ठीक है। तो जादू से घर में लड़ाई करवाना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स इट कैन बी टर्म्ड एज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, ठीक है। क्योंकि रूहानी बीमारी जो है ना वो तो गुस्सा है, ठीक है, कीना है, हसद है, और तकब्बुर है, और शहवत है, ठीक है ना, ये रूहानी बीमारियां होती हैं, ठीक है। और ये रूहानी बीमारियां जो होती हैं ये फिर इंसानों के साथ जो है ना वो हमारे ताल्लुकात को खराब करती हैं। गुस्से की वजह से जुबान काबू में नहीं रहती, हाथ काबू में नहीं रहता, तकब्बुर की वजह से जो है ना वो अपने आप को बड़ा समझता है, दूसरे को छोटा समझता है, इस वजह से दूसरे को टिका देता है या कोई नुकसान पहुंचा देता है। शहवत की वजह से दूसरे के पास जो माल है या जो उसके पास चीज है वो हड़प कर जाना चाहता है, शहवत है ये, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है वो घरों के अंदर लड़ाई होती है, ये सारी कॉजेज होती हैं लड़ाई की, ठीक है। अब गुस्से, अब ये सॉरी, ये जो आपका सवाल है कि जादू के जरिए से लड़ाई करवाना, ठीक है। तो अब इसमें जो है ना ये एक तो मैं पहले से डिस्क्लेमर दे दूं, ठीक है, कि भाई ये जादू वादू जो है ना ये आपको हाई लेवल तो साजिश ने बता दिया, ठीक है ना, लेकिन मैं कोई इसका इस फील्ड का अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस फील्ड का कोई एक्सपर्ट हूं नहीं, कि हाउ डज इट वर्क एंड हाउ व्हाट व्हाट एल्स कैन दे डू, ठीक है ना। तो अब जादू के बारे में हमें इतना तो पता है कुरान मजीद से, ठीक है ना, कि हारूत और मारूत का जो जादू होता था ना, जो वो अल्लाह के हुक्म से आकर के बनी इसराइल को सिखाया करते थे, तो उससे क्या होता था कि जुदाई है ना, बैनल मर ए वजी, आदमी और उसके जौज के दरमियान जो है वो जुदाई डाल देता था वो जादू, ठीक है। तो अब वो जादू क्या करता था, कैसे एक्चुअली जो है ना वो प्ले करता था, ठीक है ना, कि वो बिल्कुल ठीक ठाक बहुत ही रूहानी तौर पर हेल्दी किस्म का जो एक कपल होता था, जोड़ा होता था, तो उसके अंदर जो है वो क्या जादू कैसे जो है वो ये लड़ाई करवा देता था, ठीक है ना, या यानी बिल्कुल जीरो से वो जो है वो रूहानी बीमारी को गोया के पैदा करता था? नहीं, ये बात तो हमारे मशाइख क्लियर है इस बात के ऊपर कि जादू जो है ना ये रूहानी बीमारियां पैदा नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये आप मोहब्बतैन की तफसीर पढ़ लें 30वें बारे के आखिर में, बिल्कुल कुरान मजीद का आखिर है वो, ठीक है। तो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने भी बात लिखी है, तो जादू पैदा तो नहीं कर सकता, तो फिर जादू जो है वो मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो तफरका कैसे डाल देता है? तो वल्लाहु आलम है ना। अब वो या तो रूहानी बीमारियां जो पहले से मौजूद हैं लेकिन अभी दबी हुई थी तो उनको किसी तरीके से एक्सप्लॉइट करता है, या कोई इस किस्म का जो है वो क्या कहते हैं इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन या वसवसे, जहन के ख्यालात, वो चीजें उसके अंदर डाल करके जो है ना फिर वो एक्सप्लॉइट करता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूहानी बीमारी। जैसे कि जो जादूगर थे मूसा अलैहिस्सलाम का जिनके साथ मुकाबला हुआ था, ठीक है ना, वो जादूगर ही थे ना, उनको कोई और नाम तो नहीं दिया गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, ऑप्टिकल इल्यूजन से काम लिया था, कि रस्सियों को जो है वो सांप दिखाना शुरू कर दिया था, हालांकि वो सांप नहीं थी, कुरान मजीद के अल्फाज से भी साबित है और हमारे मशाइख ने तफसीर भी उसकी यही करी है कि वो सांप नहीं थी, आंखों के सामने जो है ना वो एक वो तवज्जो डाल करके अपने जादू के जोर से आंखों के सामने एक एक तसर्रुफ कर दिया था, जिससे कि सारी की सारी ऑडियंस को, इंक्लूडिंग फिरौन, इंक्लूडिंग मूसा अलैहि सलाम एंड हारून अलैहि सलाम, सबको वो रस्सियां सांप नजर आनी शुरू, है ना। तो उलुल अजम नबी अलैहि सलाम के सामने भी वो ऑप्टिकल इल्यूजन जो है वो काम कर गया था, उनको भी वो सांप नजर आनी शुरू हो गई थी, ठीक है ना। तो क्या ख्याल है कि मियाँ बीवी को जो है ना वो ऑप्टिकल इल्यूजन के जरिए से जादूगर जो है वो कोई ऐसा मामला नहीं दिखा सकता कि जिसकी वजह से उसको आया कि मैं थप्पड़ मारूं अपने बीवी को, और बीवी का दिल चाहे कि मैं जो ना वो उसके सर के ऊपर बजना शुरू हो जाऊं, और फिर जो है वो जाहिर सी बात है जब वो बजेगी, जब ये हाथ लगाएगा या कोई उल्टी सीधी बात करेगा, तो फिर जो है वो आगे से रेस्पॉन्स जो है प्यार मोहब्बत का तो नहीं आएगा, ठीक है। तो जादू के जरिए से, ऑप्टिकल इल्यूजन के जरिए से, या सम सॉर्ट ऑफ इल्यूजन के जरिए से फिर जो है वो ऐसे हालात पैदा कर दिए कि फिर लड़ाई शुरू, दंगा फसाद शुरू, ठीक है। तो कुरान मजीद से ये दोनों तफसीलात हमारे सामने आती हैं, तो आपके सवाल का फिर अल्लाह ताला ने जवाब दिलवा दिया, बस बाकी कोई और सवाल हो तो बताइएगा। जादू का असर शायद आरजी होता है, जबकि रूहानी बीमारियां ज्यादा देर पा होती हैं अगर इलाज ना किया जाए। नहीं, जादू का भी यही सुना है कि अगर उसका भी इलाज ना किया जाए, या जो भी इसके निकलने के असबाब होते हैं, इलाज ही कहलाएंगे सारी, तो वो अगर ना किया जाए तो उसका भी असर रहता है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्होंने इस फील्ड के अंदर जो है ना वो अपनी पीएचडी वगैरह की हुई होती है अपने तौर पे, तो वो पता बता सकते हैं कि जी यहाँ पर जादू का असर है यहाँ, या यहाँ पे जादू का असर नहीं है, ठीक है। तो अभी भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिससे मालूम किया जा सकता है, और वो और माशाल्लाह अहले हक में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, तो वो बता देते हैं अपने इल्म के बदौलत के जादू है कि नहीं है, तो उसका इलाज कैसे करना है, क्या करना है या नहीं करना है। ये बिल्कुल एक फिजिकल बीमारी, इसको कोई ताल्लुक नहीं है जादू के साथ, ठीक है। बस बात क्लियर हो जाती है, फिर इसी तरीके से फिजिकल इलाज ही करना पड़ता है। बहरहाल तो ये देरपा वगैरह इतना नहीं है। हाँ, ये और बात है कि जादू जो है ना वो इंसान को कब्र तक तो ले जा सकता है, जहन्नुम तक नहीं ले जा सकता, ठीक है ना। तो इसका असर जो है ना वो बस दुनिया की जिंदगी तक ही है, जबकि रूहानी बीमारी का जो असर है ना, अगर इसका इलाज ना किया जाए, या ये जो है ना बगैर तौबा के मर जाए, तो ये फिर जो है ना फिर कब्र में अजाब, और उसके बाद फिर जहन्नुम का अजाब, ठीक है। इस वजह से असल जो मसले वाली और असल जो फिक्र करने वाली चीज़ है वो रूहानी बीमारी है, ईमान वाली, जिनको हिसाब किताब के ऊपर ईमान है। जिसको ईमान ही नहीं, तो वो तो जाहिर सी बात है वो तो खाली जिस्मानी बीमारियों की ही फिक्र करेगा ना। जब ये आजकल आप देख लें जो फिजिकल डॉक्टर्स होते हैं उनके आगे पीछे फिर रहे होते हैं, है ना, उनकी इतनी इज्जत, उनका इतना मुकाम, हर बंदा जो है वो उनके सामने लाइन लगा के खड़ा हुआ है, और डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, है ना। और जो रूहानी बीमारी के डॉक्टर साहब होते हैं उनको कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा होता, ठीक है ना, या अगर करा भी रहा होता है ना तो वो बीमारी के इलाज के लिए नहीं करवा रहा होता, वो किसी दूसरे चक्कर में करवा रहा होता है, इल्ला माशाल्लाह चंद लोगों के अलावा, ठीक है। तो भाई ईमान वाले तो फिर रूहानी बीमारी को अपनी प्रायोरिटी देते हैं, उससे बचने की ज्यादा तदबीर करते हैं, और उसमें हमारा सबसे बड़ा मसला क्या, झूठ का मसला है ना। ये झूठ जो है ना ये ले डूबेगा हम सबको किसी न किसी दिन, बल्कि गलत अल्फाज हैं, किसी न किसी दिन वो ले डूब चुका है, बस कामिल तौर पर ले डूबेगा किसी न किसी दिन अगर हमने तौबा नहीं करी। तो झूठ जो है ना ये खतरनाक तरीन गुना है, ठीक है। क्या जादू की वजह से भी रूहानी बीमारियां पैदा हो सकती हैं? भाई इतनी दफा तो बोल दिया आपके सामने कि जादू की वजह से रूहानी बीमारियां पैदा नहीं हो सकती, खलास, ठीक है ना, नहीं हो सकती पैदा, ठीक है, नहीं हो सकती। अब रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, बाद में तफसील भी बयान हो चुकी, बल्कि हारूत मारूत के कॉन्टेक्स्ट के साथ भी इसकी तफसील बयान हो चुकी, ठीक है। चौथे ये कि जब एक शख्स को किसी दूसरे शख्स के बारे में किसी तकलीफ के पहुंच जाने का अंदेशा हो, तो बेहतर यह है कि उसको आगाह कर दे और अंदेशे से बचने की मुमकिन तदबीर बतला दे, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम ने किया। हाँ, किसी शख्स को किसी दूसरे शख्स के बारे में किसी तकलीफ के पहुंच जाने का, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम ने किया। हाँ, तो जैसे तुमको ये तकलीफ पहुंच सकती है, और ना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा इस वक्त वो क्या वाकया था, लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स ये ठीक है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको अंदेशा है कि भाई कहीं तुम्हें जो है ना वो कोई मुश्किल ना हो जाए, तो तुम दरवाजों से एक यानी अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना, ठीक है। तो हिफाजती तदबीर जो थी ना, जो इनको समझ में आई, अल्लाह ताला ने दिल में डाली, उन्होंने अपने बेटों को बता दी, ठीक है। तो बता देना चाहिए, अगर आपके जहन में कोई बात आ रही है, बात अल्लाह की तरफ से आ रही है, ठीक है, तो छुपा के अपने पास मत रखना चाहिए, अगले बंदे के साथ खैरख्वाही करनी चाहिए और उसको हिफाजी तदबीर के आइडियाज दे देने चाहिए। अब उसके अंदर हमारे माशरे में दूसरी एक्सट्रीम भी आपको पता है ना, कि भाई माशाल्लाह जो बंदा जो है ना वो इयादत के लिए आता है, तो उसने कोई ना कोई इलाज बता के जाना होता है, ठीक है। तो अब हर बंदा ही अपने आप को डॉक्टर क्या बल्कि बेहतरीन जो है वो दुनिया का मौलवी समझ रहा होता है, तो आप किसी कोई शख्स बीमार पड़ जाए, ठीक है ना, तो अब जो है ना वो फ्री के मशवरे हर बंदा दे रहा होता है। तो वो एक दूसरी एक्सट्रीम है, और एक एक्सट्रीम ये है कि नहीं जी, दिल में बीमारी का इलाज आ भी रहा है, पता भी चल रहा है, और जो है वो शर्मा शर्मी में या पता नहीं किसी वजह से बता ही नहीं रहा कुछ। तो ये हो गई चौथी बात। क्या लिखा आपने कि दो इल्म है, एक जादू है जिसके बारे में आता है, वमा कफरा सुलेमान वलाकिन्ना शयातीन कफर, जिससे जिस्मानी बीमारी लाहिक होती है। दूसरा है टोना मंत्र, जादू टोना और मंत्र मंत्र जो कि बाबुल के शहर हारूत और मारूत पर नाजिल किया गया, जिससे मियाबी में लड़ाई होती है। अच्छा माशाल्लाह, तो आपसे फिर किसी दिन इन दोनों के ऊपर क्लास लेंगे, आप जरा हमें वाकिफ कीजिएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है भाई। हमारे हम हमारे नाटक में तो दोनों एक ही चीज होती है, आपने टोना मंत्र जहाँ की जो भाई, हम तो कहते हैं जादू टोना, और मंत्र जो है ना ये भी हिंदुओं के यहाँ मंत्र का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, और मंत्र जो है ना ये इबादत के अल्फाज होते हैं इनके, जिसके अंदर वो जादू भी कर रहे होते हैं। बहरहाल इस फकीर के इल्म में तो ये था कि दोनों एक ही चीज़ होती है, और दोनों का असर भी एक ही चीज़ होती है। तो आपने दोनों को अलग अलग बयान किया है। अच्छा, मुझे कुछ ब्रेक लेनी पड़ेगी, हमारे साथ कुछ जरूरत है, पॉज कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो इस पर आपके पास कोई तफसील हो तो बता दीजिएगा, मुझे तो पहले कह दिया कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उसका, अल्हम्दुलिल्लाह। पांचवी चीज के ये कि जब किसी शख्स को दूसरे शख्स का कोई कमाल या नेमत ताज्जुब अंगेज मालूम हो और खतरा हो कि उसको नजरे बद लग जाएगी, ठीक है, किसी का के पास नेमत है, माल दौलत है, खूबसूरती है, इल्म है, बहुत ज्यादा जो है वो जहानत है, तो ये नेमतें हैं, औलाद माशाल्लाह, ठीक है, तो उसको खतरा है कि उसको नजरे बद लग जाएगी, तो उस पर वाजिब है कि उसको देकर बारक अल्लाहु या माशा अल्लाह कह ले, ताकि दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे, ठीक है। यानी अहम बात एक तो ये कि खुद कह या ये हुक्म चुका, वहां पे वो कवर हो चुका, कि उसको यानी तकलीफ पहुंचने का अंदेशा है तो उसको बता दे, ठीक है ना, उसको आगाह कर दे और उससे बचने की मुमकिन तदबीर बतला दे, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम ने किया, ठीक है। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आजकल के वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर, ठीक है ना, वर्चुअल वर्ल्ड जिसमें हम ज्यादातर रहते हैं ना, खुसूसन मुल्क से बाहर रहने वाले लोग, ठीक है, जो मुल्क के अंदर रहते हैं ना, तो वो तो फिर फिजिकली अपने दोस्त अहबाब के रिश्तेदारों के करीब होते हैं, मिलना जुलना होता है, मुलाकात होती है, ठीक है ना, फिजिकली मुलाकात होती है, एक ही शहर में जो लोग रहते हैं, ठीक है ना, हो ही जाती है, ईद पे तो हो ही जाती है ना कम से कम। लेकिन जो शहर के बाहर रहते हैं या दुनिया में दूर कहीं रहते हैं, तो उनकी मुलाकात फिजिकली नहीं हो रही होती, उनकी मुलाकात फिर कैसे हो रही होती है, जूम के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर या IMO के ऊपर या जियो या वो मीट के ऊपर है, गूगल मीट के ऊपर हो रही होती है मुलाकात, ठीक है। तो ये वर्चुअल वर्ल्ड है जिसके अंदर हम, तो अब इस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है वो पहले भी खैर बात कर चुके हैं, तस्वीरों का मामला, लोग जो है ना वो अपनी तस्वीरें पोस्ट करते हैं, अपने बच्चों की तस्वीरें पोस्ट करते हैं, अपने खानदान की और अपने जो है वो किचन की तस्वीरें, और अब यानी जो कुछ करते हैं वो सब कुछ जो है वो वर्चुअली शेयर कर रहे होते हैं पूरी दुनिया के साथ, ठीक है। तो अब अगर हमारे बस में है किसी को समझाना, हर बंदे को तो समझाया भी नहीं जा सकता ना, हर बंदे से बात नहीं की जा सकती, लेकिन अगर कोई ऐसा है कि जिस जो सुनने के लिए आपकी बात कुछ तैयार हो, तो आप उसकी अगर तस्वीर देखें कि कि उसने अपनी तस्वीर लगाई हुई है, या अपने बच्चों की तस्वीर लगाई हुई है, या अपने कारनामों की तस्वीर लगाई हुई है व्हाट्सएप प्रोफाइल के ऊपर या अपने फेसबुक के ऊपर, ठीक है ना? तो उसको समझाना, ठीक है ना, उसको समझा दें कि भाई ये इंतहाई खतरनाक चीज है, ठीक है ना, इसके जरिए से आपके ऊपर जादू किया जा सकता है और दिस इज अ वैलिड मेथड ऑफ डूइंग जादू, ठीक है ना? तो प्लीज डोंट पोस्ट योर फोटोज, प्लीज डोंट पोस्ट योर फोटोज, ठीक है, अपने बच्चों की तस्वीरें मत लगाओ, अपने दूसरे अजीजों की या अपने जो है ना वो यानी कारनामों की तस्वीरें और वीडियोस जो है वो मत डालो, ठीक है ना? बाद में रोओगे, बाद में पछताओगे, ठीक है, तो फिर उस वक्त बहुत दूर देर हो चुकी होगी, ठीक है? तो इस तरीके से किसी को समझा देना चाहिए, और बंदा बंदा देख करके भी बात करते हैं ना, पहली बात तो ये देखा कि बंदा बात सुनने के काबिल भी है कि नहीं है, तो जो काबिल होगा उसी से बात करेगा बंदा। फिर उसके बाद जो है ना ये भी देखना होता है कि अच्छा बात सुनने के तो मोड में है ये बंदा, लेकिन ये कौन सी वाली बात ज्यादा सुनेगा, उसको नुकसान से बचाना फिलहाल है ना प्रायोरिटी हमारी, तो अब ये कौन सी वाली बात ज्यादा सुनेगा, ये शरीयत की बात सुनने वाला बंदा है या ये जादू वाली बात ज्यादा सुनने वाला बंदा है, ठीक है ना? तो शरीयत वाली बात ज्यादा सुनने वाला हो, जैसे कि माशाल्लाह बड़ा कहता हो कि हाँ अभी शरीयत होनी चाहिए, शरीयत को तो फॉलो करना चाहिए, तो उसको शरीयत के अहकाम बता दें, है ना, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक बता दें, ठीक है, और जो हमारे अकाबरीन ने इसके ऊपर मेहनत करी है वो चीज़ उसके सामने रख दें, अगर वो अकाबरीन की इज्जत करने वाला है तो, लेकिन अगर वो नहीं है इस तरह का तो फिर उसको सीधा सीधा जो है ना वो जादू का बता दें, ठीक है ना, कि भाई इसके जरिए से आपके ऊपर जादू हो सकता है और जादू होने से आपके ऊपर जो है ना वो ये जो है वो बुराइयां आपके ऊपर और आपके औलाद के ऊपर आ सकती हैं, तो भाई मत लें इस किस्म का रिस्क, तस्वीरों को हटा दें। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस आजिज़ को तौफीक दी, कई सालों पहले जो है ना वो हमारे इसी तरह के करीबी रिश्तेदार ने जो है ना व्हाट्सएप प्रोफाइल के ऊपर जो है वो अपने बड़े माशाल्लाह प्यारे प्यारे बच्चों की तस्वीर डाली हुई थी, ठीक है ना? तो बहुत शदीद जो है वो तकाजा पैदा हुआ, अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमा दी, उनके लिए एक बड़ा लंबा सा एक नोट लिख लिया, ठीक है, और उसके अंदर वही जो है वो इजिप्ट के कब्रिस्तान में जो तस्वीरों के ऊपर जादू वाला वाक्य आपको पहले ही बता चुके हैं, तो वही उनको सब कुछ लिख करके दिया, लेकिन उनका फिर एक्सपेक्टेड था वही जवाब के नहीं, अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी कवर कर लिया कि भाई अल्लाह ताला की हिफाजत जो होती है ना ये मशरूत होती है, ठीक है ना, ये कंडीशनल होती है, अगर हम उस कंडीशन को वायोलेट कर रहे होते हैं तो फिर अल्लाह ताला की हिफाजत जो होती है ना वो हमसे उठा ली जाती है, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी बात समझ में आ गई, और फिर उनके बाद कई लोगों को वही चीज़ जो है वो शेयर करी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 99% जो है ना वो पॉजिटिव रिजल्ट है, जिसको वो शेयर करी सब ने जो है वो तस्वीरें हटा ली इल्ला एक एक आध के, ठीक है? तो इस तरीके से आगाह कर देना चाहिए। पांचवा पॉइंट ये है कि वाजिब है कि खुद बारक अल्लाह या माशा अल्लाह पढ़े, ठीक है? तो ये कहाँ से ये वजूब साबित होता है, नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया कि बारक अल्लाह पढ़ो और यानी माशा अल्लाह पढ़ो, हाँ उससे भी ये वजूब साबित होता है, नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म उस हदीस मुबारक में है, पीछे जो हमने पढ़ा है जो हदीस पढ़ी है ना सुहेब बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह और आमिर बिन रबिया वाली, ठीक है, तो आप ने तंबीह फरमाई थी उनको कि वो अपने भाई को क्यों कत्ल करता है, तुमने ऐसा क्यों ना किया कि जब उनका बदन तुम्हें नजर आता नजर आया तो बरकत की दुआ कर लेते, नजर का असर हो जाना हक है, ठीक है? लेकिन इसके वजूब की इससे भी ज्यादा बड़ी दलील, क्योंकि यूजुअली एक हदीस से जो है ना वो वाजिब वजूब जो है वो साबित नहीं होता शरीयत के अंदर, ठीक है ना, उमूमन मतलब डिपेंड करता है, अब ये फुकहा का एरिया है, वैसे भी मेरा एरिया ये नहीं है उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात जो कंफर्म है वो क्या है कि किसी को तकलीफ से बचाना ये वाजिब है, ये तो 100% वाजिब है, तकलीफ से बचाना, ठीक है ना? तो क्या मतलब है कि अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो फिर लाजमन उसके ऊपर तकलीफ आएगी, तो तकलीफ से बचाना जो है वो वाजिब है, इस वजह से ये पढ़ना वाजिब है, ठीक है? तो हमारे दीन का क्या मिजाज हमारे सामने आता है कि यानी इंटेंशनली तो हराम है किसी को तकलीफ पहुंचा देना, ठीक है ना, और अन इंटेंशनली भी जो है ना वो अगर हमसे पहुंच रही है और हमें अंदाजा हो जाए कि अच्छा हमारे किसी एक्शन की वजह से किसी को तकलीफ पहुंच रही है तो उसको जो है ना वो तर्क करने के ऊपर हमें फौरन से जो है मुतनब्बे हो जाना चाहिए। अच्छा ये हो गया पांचवा पॉइंट, उसके बाद छठा पॉइंट लिखते हैं कि नजरे बद से बचने के लिए हर मुमकिन तदबीर करना जायज है, नजरे बद से बचने के लिए उनमें से एक ये भी है कि किसी दुआ और ताबीज वगैरह से इलाज किया जाए। ठीक है, दुआ से इलाज किया जाए, जैसे कि आउज़ बि कलिमात अल्लाह तामा मिन शर मा खलक। ठीक है, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला के तामा कलिमात के जरिए से, किसके साथ, मिन शर मा खलक, जो भी शर अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है, और इस तरह से मिन शर ऐन लामा, इस तरह की जो बहुत सारी मुस्लिम दुआएं किताबों में मौजूद हैं। अब तो ऐप्स भी जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो डाउनलोड की जा सकती हैं, मसनून दुआओं वाली ऐप्स। ठीक है, तो उनके अंदर ये सारी दवाएं आपको मिल जाएंगी। तो इनके जरिए से जो है ना वो एक तो हिफाजत का इंतजाम करना, यानी प्रिवेंशन, और फिर उसके बाद जो है वो दुआ के लिए भी, सॉरी इलाज के लिए भी, अगर कोई दुआएं वगैरह पता चलती हैं, या तावीज़। ठीक है, तावीज़ का क्या मतलब होता है? ये लफ्ज़ आउजू से निकला, मुअव्वज़, तावीज़, ये एक ही रूट वर्ड है इन सबका। ठीक है, तो हिफाजत के लिए जो है ना वो जो असबाब इख्तियार किए जाते हैं, तावीज़ का जो लफ्ज़ है वो खुसूसन इस्तेमाल होता है जब कोई अल्लाह ताला के बताए हुए कलिमात होते हैं या नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए कलिमात होते हैं। ठीक है ना, दुआया कलिमात हैं, कलामुल्लाह के कलिमात हैं, तो उनको जब जो है वो यानी इनकी हिफाजत, इन शुरूर से हिफाजत के लिए, या इन शुरूर शुरूर का असर हो जाए तो उनका इलाज करने के लिए जब इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इस्तेलाह में इनको तावीज़ कहा जाता है। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह के कलमात पढ़ करके जो है वो दम किए हैं पानी के ऊपर जैसे, और फिर पानी जो है वो पीने को दिया, या ऐसे ही किसी के ऊपर जो है वो दम कर दिया, यानी फूक मार दी। ठीक है ना, दम करने का मतलब क्या होता है कि जब आप जुबान से कोई कलमात पढ़ते हैं ना, तो आपकी जुबान से एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना, एक गोया के एक रूहानी मेटाफिजिकल चीज जो है ना वो आपकी जुबान से आपके मुंह के अंदर जो है ना वो जनरेट हो जाती है, सोर्ट ऑफ एन एनर्जी वो आपके मुंह के अंदर जनरेट हो जाती है। अब जब फूक मारी जाती है ना, तो वो जो एनर्जी आपके मुंह में जनरेट हो चुकी है वो उस फिजिकल एयर के साथ, क्योंकि फूक किया है आप जो है वो अपने बॉडी के अंदर से एक फोर्स निकाल करके एयर को आगे डायरेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है ना, इसी को फूक कहते हैं ना भाई। तो फूक जो है ना उसके साथ वो एनर्जी जो है वो जिस तरफ वो फूक मारी जाती है वो उस तरफ डायरेक्ट हो जाती है। तो नबी अलैहिस्सलाम अपने हाथ मुबारक के ऊपर फूंक मार करके अपने पूरे बदन के ऊपर उसको मना करते थे अपने हाथों। ठीक है ना, और जब यानी आखिरी अय्याम में इतनी नकाहत और कमजोरी हो गई थी कि पूरे बदन के ऊपर हाथ फेरना जो है मुमकिन नहीं हो रहा था, तो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा जो है ना वो ये क्या करती थी कि, अच्छा नहीं, क्या है वो, आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा जो है नबी अलैहिस्सलाम के हाथों के ऊपर फूंक करके फिर उन हाथों को नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर मस किया करती थी, यानी खुद पकड़ करके हाथों को, कि भाई हाथ नबी अलैहिस्सलाम के हों, और ठीक है वो जो है वो मस हो तो इससे जो है नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर दम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह पानी के ऊपर जब ये दम कर दिया जाता है तो वो एनर्जी जो है वो पानी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, और फिर उस पानी को जब इंसान पीता है तो उसको उससे फायदा होता है। ठीक है, तो ये सब जो है ना ये पढ़ करके फूंकने वाला मामला जो है ये हदीस मुबारक से हमारे पास कंफर्म, बिल्कुल इसके अंदर डाउट की गुंजाइश नहीं है। फिर लिख करके बाकायदा पहनने का जो मामला है, तावीज़, जैसे कि हमारे यहाँ तो सिर्फ जो छोटी सी पुड़िया टाइप की चीज़ होती है उसको जो है वो बंद करके, फिर उसको एक खास वजन के कागज में लपेट करके, फिर डोरी में लटका करके जो उसको पहना जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ से आया? ये जो है वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अमल से आया, कि वो जो है ना क्या किया करते थे कि छोटे बच्चों के को ये तावीज़ जो है ना वो लिख करके बंद करके वो टांग दिया करते, ठीक है ना, उनके ऊपर टांग दिया करते थे, यानी लटका दिया करते थे, जैसे गले के अंदर हमारे यहाँ लटकाया जाता है। ठीक है, तो वो क्या है कि बस वो खुद पढ़ने के ऊपर, क्योंकि अभी इतने छोटे हैं वो खुद नहीं पढ़ सकते, तो चलो जी इनके साथ ये कलिमातुल्लाह हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से, ये गोया कि एक दवाई है। ठीक है ना, ये क्योर है, ये एक मेडिसिन है, जैसे कोई एंटीसेप्टिक या कोई और इस किस्म का रिपेलेंट किस्म की कोई चीज़ आप अपने ऊपर लगा लें, है ना, मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं ना, वो जिस्म के ऊपर लगा लेते हैं तो मॉस्किटो नहीं बैठ सकता, उसी तरह से बद नज़र या जादू वगैरह जो है वो तावीज़ वो एक तरह का रिपेलेंट होता है, दवा है ये, बस रिपेलेंट है ना भाई, कोई मॉस्किटो जो है वो इम्यून हो जाए, भी गुनाह है ना। ये भी जो है वो फिर एक तरह से शिर्क में दाखिल हो सकता है, अगर आप जो है वो पेनाडोल की गोली को ही मुअस्सर समझना शुरू हो जाए कि भाई यही है सब कुछ, ठीक है ना। उसी तरीके से तावीज को भी अगर आप असल समझना शुरू हो जाए तो ये भी जो है फिर वैसे ही है जैसे कि आप गोली को असल समझना शुरू हो जाए, ठीक है ना। तो एक बात तो ये हो गई कि इसको ही असल समझना शुरू कर दिया तो फिर ये मसला अकीदे का मसला हो गया। दूसरा मसला क्या तावीज के साथ होता है? दूसरा मसला तावीज के साथ भी वही होता है जो कि पैनाडोल की गोली के साथ होता है। वो क्या कि पैनाडोल की गोली के अंदर अगर, अच्छा पैनाडोल तो मैं खाली नाम ले रहा हूँ ना, मसला मकसद ये कि जो जो दवा आप यूज कर रहे हैं अगर उसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो हराम है, ठीक है ना, नाजायज हराम है, ठीक है, तो उमूमी तौर पर फतवा तो इवन को ना कि वो दुआ के सॉरी दवा के बारे में भी है कि भाई नाजायज इंग्रेडिएंट्स वाली दवा जो है ना वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि शरीयत के अंदर वो नाजायज है ना। अब उसमें एक्सेप्शन होती हैं कि अच्छा भाई बहुत ऐसी बीमारी हो जाए तो फिर जो है वो कोई चीज उससे भी इलाज किया जा सकता है वगैरह, वो भाई वो अलग तफसील है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स आर इम्पोर्टेंट है ना। इवन फिजिकल मेडिसिन के अंदर भी इंग्रेडिएंट्स आर इम्पोर्टेंट, हमारे दीन की तरफ से डायरेक्शंस है उसके बारे में, ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते। तावीज के अंदर भी यही है, ठीक है, कि उसके अंदर जो कलिमात लिखे हुए हैं ना वो कलिमात अगर नाजायज कलिमात है तो फिर वो तावीज जो है वो नाजायज है, उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। लेकिन अगर जायज कलिमात है यानी कुरान मजीद के कलिमात हैं या जो है वो उसके कलिमात हैं, क्या कहते हैं हदीस मुबारका के कलिमात हैं या कोई दुआया कलिमात हैं, तो तावीज जो है ना वो नाजायज नहीं है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा उन्होंने बड़ा मजे का सवाल कर लिया कि तो फिर शेख साहब अरब में तावीज क्यों मना है? मुझे शेख साहब दिखा के आते हैं कैसी कैसी तावीजें होती हैं इधर, है ना। और सबसे बड़े वाले हैं पता है आप कोई भी नहीं गया, लेकिन जो दोस्त गए हैं जो जानते हैं वो बताते हैं कि वो तो बकायदा इज्तमाही तावीज चलती है, इज्तमाही फूंक चाहिए, ठीक है ना, सबको बिठाया हुआ होता है, ये साहब आते हैं बिल्कुल यानी चल, और वो सबके ऊपर फूंक के जाते हैं एक साथ, और तावीज भी दबा के मिलती है, सब कुछ मिलता है, ठीक है ना, और दम वम वाला पानी भी सब कुछ मिलता है, ठीक है ना। तो वो तो पाकिस्तान इंडिया वालों को बेवकूफ़ बनाने के लिए तो ये होता है कि उनको उनके उलमा से बदजन करना वो एक अलग पूरा का पूरा एक साइंस है, ठीक है ना। और दूसरी वजह ये भी है कि हमारे यहाँ जो है ना वो दूसरी एक्सट्रीम भी तो बहुत ज्यादा है, बिदात और शिर्क वो भी तो बहुत ज्यादा है ना। तो वो जो इतना ज्यादा शिर्क और बिदात जो होती है ना तो उसको कर्ब करने के लिए, उसको निप करने के लिए है ना, तो उसके वजह से जो है ना फिर इवन हमारे अपने हजरात भी इन चीजों को डिस्करेज करते हैं, ठीक है ना। इवन हमारे अपने हजरात जो कि तावीज और अमलियात वगैरह को जायज समझते हैं वो भी डिस्करेज कब करते हैं, जब वो ऐसे लोगों के हाथ में देखते हैं कि जो कि शिर्क और बिदात में मुबतला है, ठीक है ना। इसी वजह से अरब में भी अगर आपको इसके खिलाफ कोई नेगेटिव बात नजर आती है ना तो उसकी एक तो वो नेगेटिव रीजन हो गई कि भाई दूसरे चक्कर में, लेकिन पॉजिटिव उसकी रीजन ये है कि चूंकि हमारे यहाँ जो तमाशे होते हैं वो इतने हदूद सारी हदूद को क्रॉस किए हुए होते हैं जिसमें कि कब्र परस्ती और शिर्क और हर चीज इसके अंदर शामिल है, तो इस वजह से जो है ना वो भाई तुम लोग ना किया करो, तुम्हारे तुम्हारे बस में नहीं है तो उसको हैंडल करना, ठीक है। एनीवे तो ये हो गई छठी बात। अच्छा टाइम कितना रह गया है? वो टाइम तो हो गया है बस, सातवां और आठवां जल्दी से कर लेते हैं। सातवीं ये है कि दानिशमंद मुसलमान का काम ये है कि हर काम में असल भरोसा तो अल्लाह ताला पर रखे मगर जाहिरी और मादी असबाब को भी नजरअंदाज ना करे, ठीक है। वही असबाब की बात कई दफा हो चुकी है, जिस कदर जायज असबाब अपने मकसद के हुसूल के लिए उसके इख्तियार में हो यानी जायज हो और उसके अख्तियार में हैं उनको बरोए कार लाने में कोताही ना करें, जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने किया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसकी तालीम फरमाई है। दानाए रोम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया यानी मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह ने कि बर तवक्कुल जानू ए इश्तर बिही बंद, ठीक है, मतलब जो भी इसका मतलब फारसी नहीं आती, तो यही पैगंबराना तवक्कुल और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम की वो मशहूर जो बड़ी फेमस हदीस है कि एक साहब एक आराबी ने आके पूछा कि मैं अपने ऊँट को बांधूं या अल्लाह पे तवक्कुल करूं, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कल व तवक्कल, पहले जो है वो तुम असबाब इख्तियार करो यानी रस्सी से उसको बांधो, फिर उसके बाद अल्लाह पे तवक्कुल करो। क्या मतलब कि अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा, कोई चोर आकर के रस्सी खोल कर उसको नहीं लेकर के जाएगा, है ना। तुमने तो रस्सी बांध दी लेकिन तुम्हें अब क्या पता कि जब तुम सो रहे होगे तो चोर आकर के रस्सी खोल करके उसको ना ले जाए, या ऊंट खुद ही रस्सी तोड़ा करके भाग के ना चला जाए, वो तो तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, तुम तो सोए पड़े हुए होगे अंदर, ठीक है ना, लेकिन रस्सी जरूर बांध, ठीक है। तो इसी के ऊपर कोरोना के जमाने में तो खूब मुफस्सल जो है वो बातचीत हुई है कि असबाब जो इख्तियार करना है ना, वो उसके अंदर दो शर्तें, असबाब में दो शर्तें हैं, हम सिर्फ एक शर्त समझते हैं। हम क्या समझते हैं कि जी जो हम जो है ना, जिसको हम शरीयत समझते हैं तो वो शरीयत के मुताबिक होना चाहिए सबब, है ना, जैसे इंग्रेडिएंट्स जो है वो हराम नहीं होने चाहिए, तरीका जो है वो हराम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि भाई शरीयत ने एक और भी चीज सिखाई है जिसको क्या हमने शरीयत से बाहर निकाल फेंका है, वो क्या है, अकल इस्तेमाल करो, अकल। और नबी अलैहिस्सलाम के अल्फाज भी इसके ऊपर यानी दलालत करते हैं, आप सर फरमाए ए अकल, है ना, ए अकल का हम तर्जुमा करते हैं असबाब इख्तियार करो, बेशक ये इसका मतलब है, लेकिन अकल इस्तेमाल करो, ये भी तो एक सबब है जो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है, इसको क्यों जो है वो परे रख करके जो है ना वो बेअकली के फैसले करते हो, ठीक है ना। तो जो असबाब इख्तियार कर रहे हो वो अकल के खिलाफ भी नहीं होने चाहिए और शरीयत के जो जाहिरी उसूल तुम समझते हो उनके खिलाफ भी नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। क्या मतलब कि ऊंट को भागने से अगर तुमने बचाना है, ठीक है ना, तो उसको रस्सी से बांध दो, ये मत करना कि उसकी टांग काट दो कि भाई टांग काट देंगे तो ये नहीं भाग सकेगा, है ना भाई, ये भी तो इंसान कर सकते हैं ना कि टांग तोड़ दो उसकी, नहीं भागेगा फिर वो, लेकिन क्या ये अकल के मुताबिक है, है? अकल के मुताबिक तो नहीं है कि तुम उसकी टांग तोड़ दो, ठीक है। तो भाई तुम टांग तोड़ोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा ना, राइट। शरीयत के अंदर किसी जानवर को जो है वो तोड़ देना भाई ठीक है, वो हराम में भी आ जाएगा, आपने बिला वजह किसी को तकलीफ दे दी, लेकिन शरीयत के अंदर कान वान तो काटते हैं ना, मतलब आप कुछ कर सकते हैं, इस किस्म का निशान विशान लगा सकते हैं, है ना, वो क्या है कुलाता वगैरह जो है कटवट लगा दिया आपने, तो अगर टांग को जो है ना वो ऐसा नुकसान दे दो कि वो भाग ना सके आगे से, क्योंकि भाई शरीयत के अंदर इतना जो है ना वो कट लगा देना जो है वो जायज था, इस वजह से मैंने उसको ऐसा कट लगा दिया, तो भाई फिर वो तुम्हारे काम का भी तो नहीं रहेगा ना। तो अकल इस्तेमाल करो, ऐसे असबाब इख्तियार ना करो कि जो कि अकल के भी खिलाफ हो, वो हम करते नहीं हैं, हम बस वो अंधी तकलीर या बस जो है ना वो बिल्कुल ही अकल से पैदल किस्म के असबाब इख्तियार करते हैं और देखते नहीं है कि इनकी तफसीलात क्या है, क्या है। बहरहाल आठवां पॉइंट ये है कि यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे भाई को तो बुलाने के लिए भी कोशिश और ताकीद की और फिर जब वो आ गए तो उन पर अपना राज भी जाहिर कर दिया, मगर वालिदे मोहतरम के ना बुलाने की फिक्र फरमाई और ना उनको अपनी खैरियत से मुत्तला करने का कोई इकदाम किया। इसकी वजह वही है जो पहले बयान की गई है कि इस पूरे 40 साल के अरसे में बहुत से मौके थे कि वालिद माजिद को अपने हाल और खैरियत की इतला दे देते, लेकिन ये जो कुछ हुआ वो बहुक्म कवा व कदर, बहुक्म कवा व कदर बा इशारात वही, ठीक है, अभी तक अल्लाह ताला की तरफ से इसकी इजाजत नहीं मिली होगी। सराहतन इनको नहीं पता पता कि मिली थी कि नहीं मिली थी, लेकिन सारे कराइन इसी तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि यकीनन यूसुफ अलैहिस्सलाम को इजाजत नहीं मिली होगी कि वाले साहब को इतला दी जाए, कि वाले साहब को हालात से बाखबर किया जाए, क्योंकि अभी उनका एक और इम्तिहान बुनियामीन की मुफारकत के जरिए भी होने वाला था, उसकी तकमील ही के लिए ये सब सूरतें पैदा की गई, ठीक है। तो अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो करते हैं और अपने नबियों के वास्ते से वो करवाते हैं, और उसी को जो है ना वो कानून और शरीयत कहा जाता है, जो नबियों के जरिए से अल्लाह ताला करवाते हैं, उसको खिलाफ कानून खिलाफ शरीयत नहीं किया जा सकता, नहीं कहा जा सकता, बिकॉज अल्लाह ताला इज नॉट, यानी इसको कहने का एक इम्प्रॉपर या बेअदब तरीका ये है कि अल्लाह ताला इज अबव द लॉ, है ना, यानी लॉ जो है ना वो अल्लाह ताला पे अप्लाई नहीं होती, बल्कि इसका एक बाअदब और मुनासिब तरीका कहने का क्या है कि भाई अल्लाह ताला इज द लॉ, है ना, अल्लाह ताला इज द लॉ, अल्लाह ताला तो लॉ बनाने वाले हैं, अल्लाह ताला तो कानून बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये कोई थोड़ी कि हमने कानून बनाया, अब हम देख रहे हैं कि अल्लाह कानून पे पूरा उतर रहा है, नौज बिल्ला के नहीं उतर रहा भाई, अल्लाह ताला ने तो कानून बनाया है। हम जिसको कानून समझ रहे हैं, जो है कानून सही मानों में, वो क्या है, अल्लाह ताला बनाया हुआ कानून है, ठीक है। तो अल्लाह ताला जो चाहे वो करें, अल्लाह ताला को हर बात सजती है, हसीनों को हर बात सजती है, क्योंकि हसीन ही तो फिर दे कॉल द शॉट्स, राइट। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे दिलों में सही मानों में अपनी अजमत को बिठा दे, और हमें अपना सही मानों का बंदा बनने की तौफीक अता फरमा दे। वा आखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।